हरे कृष्ण। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता अध्ययन करते समय इसका मर्म भले ही हमें समझ में आए या न आए, परंतु हमारे जीवन में बदलाव अवश्य आता है। जीवन जीने के हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। यह गीता में निहित श्रेष्ठ शिक्षाओं की शक्ति को सिद्ध करता है। इन सर्वव्यापी सिद्धांतों का संसार के विभिन्न धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन हुआ है। गीता हमें समझने में सहायता करती है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक आदर्शों को हम अपने जीवन जीने की असली प्रेरणा बना सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानवता को नई दिशा प्रदान करने वाली गीता के इस अद्भुत ज्ञान भंडार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं और विभिन्न कॉलेजों व कंपनियों में मन पर नियंत्रण, सफल शिक्षण कौशल, मृत्यु के बाद जीवन व एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति पर सेमिनार लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, बेंगलोर, मैंगलोर एवं वृंदावन और विदेशों में जैसे केन्या, जाम्बिया तथा मालावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण करते हैं कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा की भगवद गीता की पृष्ठभूमि पर, कैसे भगवद गीता तक महाभारत हमें लेकर आता है और अब श्री कृष्ण तैयार हैं अर्जुन को ज्ञान देने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में कुछ नहीं कहा। पहले अध्याय में तो अर्जुन प्रवचन कर रहा था, श्री कृष्ण को अलग अलग कारण दे रहा था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया दूसरे अध्याय में। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया तब तक श्री कृष्ण ने ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया। वे ये समझा रहे थे कि जिसे भगवद गीता समझनी है उसे सबसे पहले श्री कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवद गीता समझने के लिए हमें श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता का क्या लाभ होगा, भगवान के उपदेशों का क्या लाभ होगा। तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय में पूर्ण समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषोपह तस्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम्। अभी तक मित्र था, मित्र की भांति बातचीत हो रही थी, लेकिन अब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवद गीता समझने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण जाएं। भगवान भी भगवद गीता में यही कहते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन अगर ज्ञान लेना है तो क्या करना चाहिए, आपको ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है। और वे लोग कब ज्ञान देंगे आपको, बहुत सुंदर वर्णन भगवान करते हैं कि आपको तीन उपहार लेकर जाने हैं अपने गुरु के पास या उन तत्वदर्शियों के पास जो आपको कृष्ण या भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और ये कौन से तीन उपहार हैं? पहला उपहार भगवान कहते हैं प्रणिपातेन। प्रणिपातेन यानी नम्रता। तो एक गुरु के पास जाकर हमें बहुत नम्र भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उपहार है परिप्रश्नेना, जिज्ञासा। हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, हम लोग जो रात को तारे देखते हैं ये तारे क्या हैं, और मैं कौन हूँ, मुझे कष्ट क्यों है। हम सब ये जानते हैं कि इस जगत में कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर कोई दुखी है। हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, कष्ट आ जाता है। तो प्रश्न मन में आता है कि मैं सदैव सुखी क्यों नहीं रह सकता, और इसके लिए उत्तर देना है तो हमें मिलता है उत्तर तत्वदर्शियों से। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा उपहार सेवया, सेवा का असली भाव, सेवा का सही भाव होना चाहिए, तब हम जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें भगवद गीता से ही मिलता है। भगवद गीता के पहले ही अध्याय में दुर्योधन ने जब सेना को देख लिया, दुर्योधन ने सोचा था ये 5 लोग हैं, थोड़े बहुत लोग इनके साथ में होंगे, कोई बड़ी सेना नहीं होगी। लेकिन जब दुर्योधन आए तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल सेना खड़ी है, तो घबरा गए दुर्योधन और घबरा कर द्रोणाचार्य के पास गए। तो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, शास्त्रों में जब शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है तो हर शब्द का महत्व होता है और हर शब्द किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को सूचित करता है। तो भगवद गीता में कहा गया कि जब दुर्योधन जा रहा है द्रोणाचार्य के पास तो कैसे गया, जब दुर्योधन ने देखा इतनी बड़ी सेना है, राजा वचनम अब्रवीत, एक राजा की तरह गया द्रोणाचार्य के पास और क्या कहा उसने, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमूम, कि हे आचार्य, हे द्रोण, देखिए ये पांडुपुत्रों ने कितनी बड़ी सेना खड़ी कर दी है और ये सब आपकी गलती है, ये बता रहा था। तो दुर्योधन किस भाव में गया, दुर्योधन गया अपने गुरु के पास एक राजा के भाव में, उनको उपदेश देने के लिए, उनकी गलती बताने के लिए। ये एक भाव है गुरु के पास जाने का, जो बहुत गलत है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी ओर युधिष्ठिर ने एक मार्ग दिखलाया, उस युधिष्ठिर ने एक मानसिकता दिखलाई, एक भाव दिखलाया गुरु के पास जाने का। महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, भगवद गीता कह दी श्री कृष्ण ने, अर्जुन तैयार हो गए कि ठीक है अब युद्ध करेंगे, और ऐसे में जब बस अब युद्ध होने ही वाला है, शंख तो बज ही चुके थे, दरअसल भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि शंख बजा दिए गए, तो अब शंख बज चुके थे, तो जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू हुआ तो भीष्म देव ने अपने हाथ से अपने सैनिकों को रोक दिया कि अभी आगे नहीं बढ़ना, और इधर भी सेना रुकी हुई थी। अब ये संवाद पूरा हो गया, और अब जब संवाद पूरा हो गया सब लोग तैयार हैं, अर्जुन ने कह दिया कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। अब सब ने देखा कि युधिष्ठिर ने अपने दस्ताने निकाल दिए, अपना कवच निकाल दिया, अपने जूते निकाल दिए, अस्त्र शस्त्र रख दिए, और युधिष्ठिर नंगे पांव भागे कौरवों की ओर। जब युधिष्ठिर भाग रहे थे तो सब ने सोचा कि शायद युधिष्ठिर अब समझौता करने जा रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत पहले से कभी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। जब भी युद्ध की बात होती युधिष्ठिर कहते, नहीं, हमें शांति से काम लेना है, हमें युद्ध नहीं करना है। लेकिन अब जब युद्ध होना था तो सबने देखा कि युधिष्ठिर भाग रहे हैं। अब उस समय भीम भागे युधिष्ठिर के पीछे, क्योंकि भीम 13 वर्षों से जल रहे थे, प्रण लिया था भीम ने, 100 पुत्रों को मारूंगा, धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्रों को मैं मारूंगा। अब ये समय आया था द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का, और युधिष्ठिर जा रहे हैं समर्पण करने या समझौता करने। तो भीम भागे पीछे, युधिष्ठिर ने किसी की नहीं सुनी, नकुल, सहदेव सब पुकार रहे हैं, किसी की नहीं सुनी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा कि अभी तक तो मैं मना कर रहा था युद्ध करने के लिए, अब शायद युधिष्ठिर को भगवद गीता की आवश्यकता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए, क्योंकि कृष्ण जानते थे क्या होने वाला है। और युधिष्ठिर गए, सबसे पहले गए भीष्म के पास, प्रणाम किया भीष्म को, और भीष्म से कहा, हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए, हम सब वन में जाना चाहते हैं। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर क्या बात कर रहे हो, सारी युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज चुका है। युधिष्ठिर ने कहा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि आपको तो मृत्यु, इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मरने वाले नहीं हैं, और जब तक आप नहीं मरेंगे हमारी विजय नहीं होगी। तो जब हम जानते हैं कि विजय नहीं होगी तो फिर युद्ध कैसा, इससे अच्छा है कि अभी हम चले जाएं। भीष्मदेव जान गए, दरअसल युधिष्ठिर ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर उनको ये समझा रहे थे कि आप अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, ये सही नहीं है भीष्मदेव। तो भीष्मदेव ने कहा कि मुझे दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उससे धन लिया है, और धन के सभी दास हैं, धन किसी का दास नहीं है, इसीलिए हे युधिष्ठिर मुझे युद्ध यहां से करना पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरे पास आए हो, अगर मेरे पास नहीं आते तो तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन तुम मेरे पास आए हो इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विजयी भव। तो देखिए, जिससे युद्ध करने जा रहे हैं उसी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। और उन्होंने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मुझे मारना है। और फिर युधिष्ठिर गए हाथ जोड़कर द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, हर एक वरिष्ठ के पास, और सबने उससे यही कहा, विजयी भव। दुर्योधन को किसी ने यह नहीं कहा विजयी भव। आशीर्वादों का कवच लिया युधिष्ठिर महाराज ने, दुर्योधन को केवल श्राप मिले। और उसका कारण क्या था? गलत भाव। क्योंकि दुर्योधन गया अपने गुरु के पास एक राजा की तरह, अगर वो नम्रता से जाता, क्षमा याचना करता, प्रार्थना करता, तो हो सकता है कि द्रोणाचार्य का हृदय पिघल जाता और वो उसको आशीर्वाद देते विजयी भव। लेकिन युधिष्ठिर इस भाव में गए और इसीलिए उनको इतने आशीर्वाद मिले। तो ये भाव है सही भाव जो हम भगवद गीता से सीखते हैं। तो तीन उपहार लेकर जाने चाहिए, नम्र होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए। और इसको देखकर फिर तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तब हमें उपदेश मिलता है ज्ञान का, और तब ज्ञान समझ में आता है, अन्यथा कोई ज्ञान समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ज्ञान को समझना है तो हमें प्रमाणिक परंपरा में आए हुए गुरु से ही ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। इसका भी वर्णन श्री कृष्ण करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये और कहीं से नहीं लिया जाता। आजकल भारत में या अन्य स्थानों पर भी, पूरी दुनिया में एक रिवाज हो गया है कि लोग भगवद गीता पर अपने अपने वक्तव्य देते रहते हैं, धर्म पर वक्तव्य देते हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं है धर्म पर वक्तव्य देने की, लेकिन वे लोग धर्म पर बातें करते हैं। जैसे बहुत समय पहले किसी ने कह दिया कि राधा और कृष्ण का संबंध ठीक नहीं है। भारत में ऐसा होता रहता है, लेकिन ये जान लीजिए कि किसको अधिकार है धर्म का वक्तव्य करने के लिए। जिन लोगों ने तत्व को देखा है, जो तत्वदर्शी हैं, वो कह सकते हैं। जिन्होंने जीवन समर्पण किया है कृष्ण के लिए, जिन्होंने आत्म संयम को पालन किया है, वे धर्म पर वक्तव्य कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो परंपरा में आए। परंपरा का अर्थ होता है श्री कृष्ण से प्रारंभ होकर श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं अपने एक भक्त को, फिर वो ज्ञान देते हैं दूसरे भक्त को, ऐसे परंपरा चलती है। इस ज्ञान की दो परंपराएं होती हैं, एक राजऋषियों की परंपरा और दूसरी साधुओं की परंपरा। राजऋषियों की परंपरा कभी कभी खंडित हो जाती है जब कोई सही राजा नहीं होते जो ज्ञान नहीं आगे बढ़ा सकते, लेकिन साधुओं की परंपरा वह सदैव चलती रहती है। तो इसीलिए साधुओं की परंपरा में आए हुए गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। अगर भक्तों के संग में भगवद गीता को नहीं समझेंगे तो भगवद गीता इस प्रकार होगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास शहद की बोतल है, हम उसको बाहर से उसका स्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, कभी समझ नहीं आएगा। क्या आप बोतल को बाहर से चाट कर उसका स्वाद ले सकते हैं? नहीं। शहद के लिए आपको उसको खोलना होगा और फिर शहद लेकर फिर उसका स्वाद लेना होगा। इसी तरह भगवद गीता के ज्ञान को जब भक्तों के संग में लिया जाता है, प्रमाणिक गुरु से सीखा जाता है, तभी हम उसको जान सकते हैं। ये भगवद गीता के पहले ही अध्याय में इसको समझा दिया जाता है। और फिर अब जब हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन के मन में एक युद्ध चल रहा था, तो जब अर्जुन ने समर्पण कर दिया भगवान को कि मैं ये युद्ध जीत नहीं पा रहा हूं, अर्जुन जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का क्या अर्थ होता है, और वो अर्जुन जो इतना शक्तिशाली था वो हार गया। हम सब भी अपने मन से हार जाते हैं, अपनी इच्छाओं से हार जाते हैं, अपनी वासनाओं से हार जाते हैं, अपने पूर्व के विचारों से हार जाते हैं। ये जान लीजिए कि इस जन्म में जो हमारा मन है, जो हमारी बुद्धि है, वो पूर्व जन्म में भी थी और हमारे कई जन्म हो चुके हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया श्री कृष्ण से, जब श्री कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान मैंने पूर्व काल में विवस्वान को दिया था, तो अर्जुन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो मेरी उम्र के हैं और विवस्वान तो करोड़ों साल पहले हुए होंगे, तो आप करोड़ों साल पहले कैसे आए। तब भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम भूल गए हो। हम में और भगवान में यही अंतर है। तो इसीलिए भगवान कहते बहुत जन्म हुए हैं, तो उन सारे जन्मों में हमारा मन वही रहा है, हमारी बुद्धि वही रही है, और उन सारे मन और बुद्धि के जो प्रभाव पड़े हैं उसको लेकर अब हम आए हैं इस जन्म में, और उनको दूर करने के लिए भगवद गीता का ज्ञान चाहिए। हम सबको भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। हमारी स्वतंत्रता क्या है? हम शास्त्रों का ज्ञान लेकर उसको अपने जीवन में उतारें, या फिर शास्त्रों को नकार कर जीवन भर कष्ट सहते रहें। जब हम शास्त्र के आधार पर चलते हैं, सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है नियम पालन की, हम स्वतंत्र हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हम किसी देश में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सब कोई भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है, यही मानता है ना अपने आप को कि स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है। लेकिन उसकी स्वतंत्रता क्या है? क्या वो सड़क पर जाकर किसी की हत्या कर सकता है? क्या वो किसी के घर में जाकर पैसा चुरा कर ला सकता है, ये कहकर कि मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहे कर लूं? नहीं, स्वतंत्र आप तब तक हैं जब तक आप देश के कानून के अंतर्गत पालन करते हैं। जिस दिन आप देश के कानून का पालन नहीं करते हैं, आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता है, लेकिन शास्त्र के आधार पर। जिस दिन हम शास्त्र का आधार छोड़ देते हैं, हमें दंड मिल जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता हमें ये सिखलाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उसके साथ में हमें एक मैनुअल दिया जाता है कि आप इसको पढ़िए, इसके अनुसार अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये ठीक चलेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसी तरह भगवान ने हमें ये यंत्र दिया है, ये शरीर, और इसको चलाने के लिए हमें मैनुअल दिया है भगवत गीता। उसके अनुसार अगर हम शरीर को चलाते हैं, जीवन को चलाते हैं, तो हम सुखी रह सकते हैं, और उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाना बहुत अनिवार्य है, तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर भगवद गीता में हम आगे बढ़ते हैं तो भगवद गीता क्या सिखलाती है? हमें भगवद गीता निराशाओं में आशा की किरण प्रदान करती है। जीवन में कई बार निराशाओं का सामना करना पड़ता है, आप सब ने ये अनुभव किया होगा। कितनी बार हम लोग कुछ योजना बनाते हैं, उस योजना को पूरा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हम इस चीज से, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से, इस स्थिति से प्रसन्न रहेंगे, लेकिन प्रसन्नता आती नहीं है। तो फिर ऐसा क्या होता है, ये निराशाएं क्यों आती हैं जीवन में? निराशाओं में आशा की खोज या आशा की किरण भगवद गीता हमें प्रदान करती है। जैसे पांडवों के लिए कोई आशा नहीं थी, बहुत बड़ी सेना थी कौरवों की, बड़े बड़े योद्धा थे कौरवों में, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन स्वयं कोई छोटे योद्धा नहीं थे और इस तरफ कहां इतने बड़े बड़े नाम थे। लेकिन फिर भी एक दृष्टि से देखा जाए तो निराशा थी, लेकिन एक आशा की किरण थी उनके लिए, श्री कृष्ण। भगवद गीता ये कृष्ण के द्वारा कहा गया ज्ञान है, लेकिन कृष्ण का गुणगान भी है। तो भगवद गीता हमें ये आशा की किरण प्रदान करती है, चारों ओर निराशाएं हो, हमारा जीवन निराशा से भरा हो, हमारे जीवन में ऐसी विपरीत स्थितियां हो जिसको हम सामना नहीं कर पाए, लेकिन भगवद गीता हमें वो आशा की किरण देती है ज्ञान के आधार पर। ये जान लीजिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो एक तलवार की तरह है जिससे हम अपनी बंधन को काट सकते हैं, और वो ज्ञान भगवद गीता में हमें प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवद गीता निराशाओं में आशा की एक किरण है जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। भगवद गीता में जब हम आगे चलते हैं, जैसे दूसरा अध्याय इत्यादि प्रारंभ होता है, अर्जुन पहले अध्याय में जो युद्ध कर रहा था, मन के स्तर पर युद्ध हम सब करते हैं अपनी इच्छाओं से, हमारी इच्छाएं हमें सुखी रहने नहीं देती, हमारा मन हमें सुखी रहने नहीं देता, हमारे विचार हमें सुखी रहने नहीं देते, और हमेशा मन और बुद्धि के बीच एक युद्ध चलता है। हम चाहते कुछ हैं, करना कुछ पड़ता है। ज्यादातर व्यक्ति इस समाज में जीता है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। हमारा जीवन होना चाहिए स्वयं को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और स्वयं का अर्थ शरीर नहीं, आत्मा। जब हम आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान परम आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जीवन सफल होता है। भगवान ने जब ज्ञान देना प्रारंभ किया अर्जुन को भगवद गीता में, सबसे पहले उसको बड़ा डांटा, अर्जुन से कहा कि तुम बहुत बड़े बड़े पंडितों की तरह बात करते हो, लेकिन हो मूर्ख, जानते नहीं हो। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे किनके लिए शोक कर रहे हो? ये शरीर ये वैसे भी जाने वाला है, इसके लिए शोक करके क्या लाभ होने वाला है। और फिर अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया आत्मा का, जो आध्यात्मिकता का मूलभूत ज्ञान है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिकता के सारे सिद्धांत व्यर्थ हैं। हम कर्म का सिद्धांत बिना आत्मा के ज्ञान के नहीं समझ सकते, हम कोई भी सिद्धांत बिना आत्मा के ज्ञान के नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं कि हे अर्जुन, हम सब आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा, और इस ज्ञान को लेकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि ये सारे भी जीव, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म इत्यादि, ये भी आत्मा हैं। भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि किसी को मारने में कोई गलती नहीं है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है, क्या हम भी मार सकते हैं? क्योंकि अर्जुन को कहा ये तो सब आत्मा है, तो क्या आत्मा है तो हम अपराध कर सकते हैं, हम हत्या कर सकते हैं? या कहना चाहिए कि धर्म के नाम पर क्या आतंकवाद को फैला सकते हैं, ये कहकर कि वैसे भी हम तो शरीर को मार रहे हैं, आत्मा को नहीं, और कोई तो मरता नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है, तो फिर हत्या कैसी? तो क्या किसी को मारना सही है? बिल्कुल नहीं। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की हत्या करने का। अर्जुन को भगवान अधिकार दे रहे थे कि तुम हत्या करो, इसीलिए अर्जुन ने इतने सारे लोगों को युद्ध में मारा। वो अर्जुन की भक्ति थी, अर्जुन की इच्छा नहीं थी, अर्जुन किसी को मारना नहीं चाहते थे, केवल कृष्ण के आदेश पर उन्होंने ये कार्य किया। तो हमें जब अधिकार हो तब हम मार सकते हैं। एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं, एक सैनिक जब युद्ध भूमि में जाता है, 25, 30, 50 लोगों को मार देता है, वापस आता है तो सरकार उसको पदक देती है, उसका गुणगान होता है, राष्ट्र में उसका उसकी कीर्ति को गाया जाता है कि इसने अकेले इतने लोगों को मार दिया। लेकिन जब वही सैनिक वही बंदूक लेकर वही गोली लेकर अपने घर जाता है और पड़ोसी से उसका झगड़ा हो जाता है और वो उसको वही गोली मार देता है तो क्या उसको पदक मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया ऐसा? वहां पर उसने इतने लोगों को मारा तो पदक मिला, यहां एक को मारा तो जेल जाना पड़ा? अधिकार नहीं है। इसीलिए धर्म हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं देता। धर्म तो प्रेम करना सिखलाता है। आध्यात्मिकता धर्म से ऊपर है। ये दो शब्द हैं जिनको हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। भगवद गीता हमें वो सिखला रही है, आध्यात्मिकता और धर्म। धर्म ये शरीर के स्तर पर होता है। हमने एक धर्म में जन्म लिया, हमने एक समाज में जन्म लिया, हमने एक राष्ट्र में जन्म लिया, लेकिन आध्यात्मिकता इससे परे है, आत्मा के स्तर पर। आत्मा अर्थात भगवान की संतानें। हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। भगवान सबके पिता हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना जन्म ले। तो जब हम अपने आप को साधारण धर्म से ऊपर उठाकर आध्यात्मिकता के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर लाते हैं, सच्चा भाईचारा तब फैल सकता है। आज समाज में हम लोग भाईचारे की बात करते हैं कि हमें सबको साथ में लाना है, लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम केंद्र भगवान श्री कृष्ण को बनाएं। एक भगवान है, कई भगवान नहीं हो सकते। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, भगवान एक ही हैं। उनको अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, लेकिन अगर कोई उन परम भगवान की पूजा कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो सही है। इसीलिए चाहे कितने ही धर्म क्यों ना हो, अगर एक भगवान और हम सब उनकी संतानें इसको स्वीकार कर लिया जाए, तो कभी धर्म के नाम पर झगड़े नहीं होंगे, कभी दंगे नहीं होंगे, कभी आतंकवाद नहीं फैलेगा। इसीलिए हमें इस ज्ञान को भगवद गीता के जीवन में ग्रहण करना चाहिए और सभी लोगों तक फैलाना चाहिए, ताकि हम ये जान जाएं कि हमें सारी दुनिया को एक करने के लिए भगवद गीता के सिद्धांतों की आवश्यकता है। और आगे भगवान किस आधार पर हमें कैसे कार्य करने चाहिए इसको बताने वाले हैं, मन को वश में कैसे करना चाहिए इसको बताने वाले हैं। ये हम लोग चर्चा आने वाले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा।